धड़कते दिल के पीछे कोई बात होती है, धड़कते दिल के पीछे कोई बात होती है, हर दर्द के पीछे कोई फरियाद होती है। आपको पता हो या ना हो, आपको पता हो या ना हो, आपकी हर खुशी के पीछे शिव बाबा के वरदानों की करामात होती है, शिव बाबा के वरदानों की करामात होती है। आप सब से मिलके आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मेडिकल विंग के ऑर्गेनाइजर्स से कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने विचार आपके सामने रख सकूं और आपसे इंटरेक्ट कर सकूं। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कर्मा और टू से अ न्यू लॉ ऑफ कर्मा। देखिए, अभी तक हम लोगों ने यही सुना है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, हम जो करते हैं वही हमें भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम जैसा करते हैं, अगर हम किसी को मिनिमाइज करते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं, तो वैसा ही हमें ब्याज सहित मोल चुकाना पड़ता है। अगर हम किसी को फाइनेंशियली इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं तो हमें भी वैसा ही होना पड़ता है। आज तक यही लॉ ऑफ कर्मा था, लेकिन अभी चलते चलते हम सृष्टि चक्र के उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां स्वयं डायरेक्टर क्रिएटर आके इस ड्रामा में इंटरवीन करते हैं और वो आकर हमें शॉर्टकट्स बताते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब हम हाई स्कूल या इंटर में होते हैं तो LMR मिलते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन, 10 मिनट रिवीजन पेपर्स होते हैं, उसमें शॉर्टकट्स होते हैं ताकि हम इजीली एग्जाम को क्रॉस कर सके। सिमिलरली अभी ड्रामा प्लान में इतना समय नहीं बचा है कि हम बर्थ रीबर्थ लेके अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल कर सके, इसलिए परमपिता परमात्मा जो कि युक्तियों के भी सागर हैं, वो बहुत सी युक्तियां हमें बताते हैं LMR की तरह से, जिससे हम बहुत इजीली अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल कर सकते हैं। क्योंकि हर बार जब हम इस शरीर को छोड़कर ऊपर जाते हैं, पुनर्जन्म से पहले हमें ये बताया जाता है कि देर आर सो मेनी डिफरेंट सेट ऑफ सोल्स जिनके साथ आपको अपने कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं। हम उनमें से एक ग्रुप ऑफ सोल्स को चूज करते हैं कि बाबा इस जन्म में हम इस ग्रुप ऑफ सोल्स के साथ अपना कार्मिक अकाउंट सेटल करेंगे, उसके लिए मुझे इतना समय चाहिए। लेकिन यहां आकर हम सब भूल जाते हैं, हम कार्मिक अकाउंट सेटल करने की बजाय रिएक्शन काउंटर रिएक्शन करके अपने कार्मिक अकाउंट्स को और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, इतना जटिल कर लेते हैं कि जन्म बाय जन्म हम उन्हीं आत्माओं के संपर्क में बार बार आते हैं, वहीं पे जन्म लेते हैं और हमारे बाकी सभी कार्मिक अकाउंट अनसेटल्ड रह जाते हैं। तो बाबा हमें आकर जो कि युक्तियों का सागर है, वे बहुत सारी युक्तियां बताते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जिसे आपने सुना होगा, बहुत सारे धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि किसी को दुख मत दो, किसी को भी दुख मत दो, प्राणी मात्र को भी, एनिमेट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, उनको भी दुख मत दो। अब देखते हैं जैन्स भी नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं, वो तो अपने मुंह पे हमेशा ही मास्क लगा के रखते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया या वायरस उनके मुंह में जाकर डेथ को ना पाए। वो पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते कि उसके नीचे कोई आ ना जाए, व्हीकल्स का भी यूज नहीं करते, बहुत त्याग और तपस्या जैन्स करते हैं। इसी तरह अन्य सभी धर्म भी यही कहते हैं कि किसी को भी दुख ना दो। आई थिंक यू विल एग्री विद मी, यस। बट दिस इज द हाफ द पार्ट ऑफ द इक्वेशन, ये आधा इक्वेशन है। बाबा आकर इस इक्वेशन को पूरा करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे ना दुख लो ना दुख दो, लेना फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि अगर हमने दुख ले लिया तो ऑटोमेटिकली वो मेरी वाइब्रेशंस में, मेरे ऑरा में इन्फेस्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो दूसरों तक पहुंचेगा, लाइक अ परफ्यूम, लाइक अ वाइब्रेशन, इट विल रीच द अदर्स। तो दुख ना लेना फर्स्ट पार्ट है, अगर दुख ले लिया तो ऑटोमेटिक दूसरों को आप दुख देंगे ही, क्योंकि वो आपके एटीट्यूड में, आपकी मानसिकता में, आपके व्यवहार में वो नजर आएगा। तो हमें ना दुख देना है और ना दुख लेना है. बट मे आई नो कि दुख लेना मीन्स क्या? कैन यू टेल मी? यस प्लीज. हर्ट होना, वेरी गुड. एनीवन एल्स? दुख लेना मीन्स क्या? ओके. दुख लेना मीन्स हर्ट होना. दुख लेना मीन्स फीलिंग में आना. दुख लेना मीन्स गिल्ट क्रिएट करना. आई एम गिल्टी. मैं एक अच्छी मदर नहीं हूं, मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूं. अपने आप के लिए क्रिटिकल होना, गिल्ट क्रिएट करना. और दुख लेना मीन्स रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन क्रिएट करना. नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं. अपने आप को, जिसे बाबा कहते हैं, जिद और सिद्ध करना. अपने आप को ठीक प्रूव करना. रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन, बहस, लड़ाई, झगड़ा एंड ऑल दैट. सो दुख लेना मीन्स ये सब है. अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूं. एक बार एक महात्मा जी गंगा जी में स्नान करने गए. जैसे वो गंगा जी से बाहर आए तो एक व्यक्ति आया, उसने उस पर थूक दिया. महात्मा जी वापस नहाने चले गए. वो दोबारा नहा के आए, उस व्यक्ति ने फिर उन पे स्पिट कर दिया. और ये सिलसिला 25-30 बार चलता रहा. उसके बाद महात्मा जी ने उससे कहा, बच्चे आपका मुंह सूख गया होगा, आप कल फिर आ जाना, मैं कल फिर आऊंगा नहाने. ना आप बताइए, महात्मा जी ने ऐसा क्यों किया? महात्मा जी बहुत समझदार थे, कार्मिक अकाउंट को जानते थे. उन्हें ये मालूम है कि अगर कोई इस तरह की हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, इट मींस मेरा उसका कोई पुराना कार्मिक अकाउंट है. बिना कॉज के कोई इफेक्ट नहीं होता. यू आर लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ इफेक्ट. इसकी रूट, इसकी कॉज ऊपर है, जो हम करके आए हैं. तो सर्टनली मेरा कोई कार्मिक अकाउंट है जो ये व्यक्ति ये बिहेव कर रहा है. अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो मेरा कार्मिक अकाउंट और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, सेटल नहीं होगा. अगर मैं गिल्ट क्रिएट करूंगा, मेरी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी. आई एम नॉट ए गुड पर्सन, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी आके मुझे कुछ भी कह सकता है. मेरी एनर्जी डिप्लीट होगी. अगर मैं हर्ट होऊंगा तो भी मेरी एनर्जी डिप्लीट होगी. तो मुझे क्या करना है? कौन कौन सी एनर्जी चाहिए इस सिचुएशन को काउंटरैक्ट करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में सहन शक्ति चाहिए, पावर ऑफ टॉलरेंस, जो दूसरे व्यक्ति ने कहा उसे टॉलरेट करने की. उसके बाद समाने की शक्ति. आप उसे संभाले, रिएक्ट नहीं करें. यहां रिएक्शन का मतलब नॉट ओनली एक्सटर्नल रिएक्शन कि हम बोल के जो करते हैं, दैट मीन्स इंटरनल रिएक्शन ऑल्सो. कि यहां भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है. मैं यहां पे एक बहुत प्यारी सी आपको छोटी सी घटना बताती हूं. जो हमारी दादी प्रकाशमणि जी थी, इंचार्ज थी ब्रह्म कुमारीज की, बहुत सीनियर दादी, बहुत ही स्वीट पर्सनैलिटी थी. तो एक बार दादी के पास एक बहन आई, एक छोटी बहन जैसे कि आई हुई है सेवा में, और उसने आके, उसे किसी ने कुछ कहा होगा, उसे कोई सॉल्वेशन चाहिए था, वो नहीं मिला. उसने दादी को आके बहुत कुछ कहा. तो उनके पास एक और सीनियर बहन बैठी थी. दादी ने बहुत पेशेंटली सुना, कोई रिएक्शन नहीं दिया, और कहा ठीक है बहन, मैं देखूंगी, और उसे टोली देके भेज दिया. अब जो उनके साथ एक बहुत सीनियर सिस्टर बैठी थी, उसने कहा, दादी आपने क्या कहा? इतनी छोटी बहन, वो आप चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, 140 कंट्रीज में आपका ब्रांचेस, और आपको इतनी बातें कह के चली गई. आप क्या कर रहे थे जब वो बोल रही थी? तो आपका रिएक्शन क्या था? एक्सटर्नल तो कुछ नहीं था. तो दादी ने कहा, मैं अपने आप को चेक कर रही थी कि इसकी बातें सुन के मेरे अंदर इसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कहीं कम तो नहीं हो रही. इमेजिन ग्रेटनेस देखिए दादी की, कि इसने सपोज मुझे गाली भी दी, कुछ भी कहा, उसको सुन के जो मेरे अंदर इस आत्मा के प्रति शुभ भावना है, शुभ कामना है, उसमें कोई अंतर तो नहीं आ रहा। सो आई वॉज चेकिंग माई सेल्फ, मैं तो उसे सुन ही नहीं रही थी। जस्ट इमेजिन। तो देखिए, अगर हम रिएक्ट करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली तो हमारे कार्मिक अकाउंट और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। तो हम ना रिएक्ट करना है, ना हमें गिल्ट क्रिएट करना है, ना हर्ट होना है, ना फीलिंग में आना है। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाता है। तो वो व्यक्ति महात्मा जी के पैरों में गिर गया और उनका शिष्य बन गया। अभी देखिए, इस एक्ट के लिए, इस कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए आपको कौन कौन सी शक्ति चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सहन शक्ति चाहिए, दूसरा समाने की शक्ति चाहिए, समाएंगे तभी रिएक्शन बंद होगा अंदर का। उसके बाद तीसरी कौन सी शक्ति चाहिए? माफ करने की शक्ति चाहिए, फॉरगिवनेस चाहिए, कि आप उसके एक्ट के लिए उससे माफी नहीं कर रहे बल्कि उससे माफी भी मांग रहे हैं। और चौथा, उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। हे आत्मा तुम शांत हो जाओ, तुम बहुत अच्छे हो। हे आत्मा तुम सुखी रहो, शांत रहो, निरोगी रहो, तुम ईश्वरीय शक्तियों के अधिकारी बनो, तुम्हारा कल्याण हो। पिछले जन्म का हमारा कोई कार्मिक अकाउंट है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, और आपने जो किया उसके लिए आपको माफ भी करता हूं। तो अगर हम इतना कर लेते हैं तो वो कार्मिक अकाउंट जो जन्म बाय जन्म हमें भुगतने पड़ते हैं उसको हम इस शॉर्टकट मेथड से बहुत थोड़े समय में ही चुक तुक कर सकते हैं। और वो आत्माएं जो आपके साथ, जिनके साथ आप इस तरह से कार्मिक अकाउंट सेटल करेंगे, वो आपके फ्रेंड तो बन ही जाएंगे, वो आपके भक्त बन जाएंगे, वो आपके मित्र बन जाएंगे। आप एनिमी को भी अपने मित्र में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्री? इज इट क्लियर? बट ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया, इट इज वेरी इजी टू से बट इट इज नॉट सो इजी टू डू इट। तो इसको करने की मेथोडोलॉजी क्या है, वो बाबा हमें, आप कहिए, डेली मुरलियों में देते हैं, जिसको हम कहते हैं ज्ञान के अस्त्र और शस्त्र। बाबा ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा हमें ये सारी समझानी देते हैं। तो अगर सपोज करिए आपके सामने कोई आ गया और उसने आपको बहुत भला बुरा कहा, तो आपने अगर फर्स्ट थॉट नेगेटिव क्रिएट कर लिया, फर्स्ट थॉट हर्ट का या गिल्ट का या फीलिंग में आ गए, तो फिर तो आप गए, एनर्जी डिप्लीट। फिर तो आप थॉट्स की चेन को रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं? ये मुझे पता नहीं क्या समझता है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, अपने आप को क्या समझता है, दिस 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 एंड बला बला, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कौन सा वो फर्स्ट पावरफुल थॉट क्रिएट करें कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले उससे। तो हम देखें इन शस्त्रों को, ओके? तो सबसे पहला थॉट आपको क्या क्रिएट करना है, ये एक आत्मा है जो 5000 साल की यात्रा पर है। इस जर्नी के दौरान पता नहीं इसको किस किस तरह के लोगों से वास्ता पड़ा है, किस किस तरह से लोगों ने इसे हर्ट किया, परेशान किया, इसलिए इसका ये नेगेटिव संस्कार बन गया दूसरों से अपशब्द बोलने का। तो ये मुझे इससे हर्ट होने की जगह इस पर रहम करना है। काश इसे भी बाबा मिला होता, इसे भी अच्छे लोगों की कंपनी मिली होती, तो इसका ये नेगेटिव संस्कार नहीं बनता। तो मुझे उस पे एक रहम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक व्यक्ति और उसका रोल दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। एक आत्मा है, हम एक पर्सनैलिटी है, एक आत्मा है। आत्मा बेसिकली सतो प्रधान है, सतो गुणी है। हर आत्मा अपने घर से प्योर आई थी, उसमें सभी गुण और शक्तियां थी, यहां आके एक संग दोष के कारण उसने बहुत कुछ और खराब चीजें इम्बाइब कर ली है, लेकिन हर आत्मा साफ होके ही वापस घर जाएगी। अर्थात हमारी इंट्रिंसिक नेचर बिफोर कमिंग टू दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर गोइंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड इट विल बी 100% प्योर। तो ये आत्मा बहुत प्योर है, मेरा भाई है, बिकॉज हम सभी सोल्स हैं, लेकिन इसने जो गलत रोल अपनाया है इस ड्रामा प्लान में, इसका यही रोल है। जैसे आप देखिए, कोई भी पिक्चर एक विलियन के रोल के बिना भी कंप्लीट नहीं होती, और इसको जो रोल मिला है, इसे डायरेक्टर ने जो रोल दिया है, उस रोल को वो परफेक्टली प्ले कर रहा है। तो क्या मुझे उससे नाराज होना चाहिए? आई शुड अप्रिशिएट कि ये कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ओके, फिर देखिए, आप ना रिएक्ट कर रहे हैं, ना आप उसकी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आपका इन्वर्टर होता है, वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से हमें हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। देखिए, आप देखिए, जैसे सपोज करिए किसी का धन का नुकसान हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, धनवान के माल पे, कमबख्त की जान पे। कारण, क्योंकि नेगेटिविटी को आत्मा कभी भी समा नहीं सकती, इसलिए हम नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, चोट 10 दिन में ठीक हो जाएगी, जान तो बच गई। और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, यहां बहुत परेशान था, वो स्वर्ग में चला गया। व्हाट डज इट शो? बाबा भी यही कहते हैं कि आप एक कन्वर्टर हो, जो हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। फिर बाबा ने कहा कि देखिए, आप एक बात देखिए, आप हर्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हर आत्मा जो आपको कुछ कह रही है, वो आपके बारे में नहीं कह रही, वो केवल अपने बारे में बता रही है। जैसे मैं कहूं कि बहन, ये आपने ड्रेस पहन रखी है, ये ड्रेस अच्छी नहीं है, आपको सूट नहीं कर रही, ओके, लेकिन 10 और लोग कह रहे हैं कि आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी है। इट मीन्स कि ड्रेस के बारे में मैं नहीं बोल रही, मैं किसके बारे में बता रही हूं कि मेरा दृष्टिकोण नेगेटिव है, मेरा दृष्टिकोण दूसरों की कमियां देखने का है, इसलिए मैं कह रही हूं कि आपकी ड्रेस अच्छी नहीं है। इट मीन्स कि मैं आपके लिए तो कुछ कह ही नहीं रही, मैं जो भी कह रही हूं वो अपने बारे में बता रही हूं कि मेरा दृष्टिकोण क्या है। सिमिलरली, जो व्यक्ति इससे ऑपोजिट बता रहा है, इससे ऑपोजिट बता रहा है कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, वो क्या बता रहा है? वो भी अपने बारे में बता रहा है कि उसका दृष्टिकोण कितना पॉजिटिव है। तो हम लोगों की बातों से क्यों हर्ट होते हैं? दुनिया में किसी को फुर्सत नहीं है आपके बारे में कुछ कहने की, हर आदमी अपने बारे में बता रहा है। जब हर आदमी केवल अपनी एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम सारा दिन में 10 बार फीलिंग में क्यों आते हैं? किसी ने तारीफ कर दी, हम खुश हो जाते हैं, किसी ने आलोचना कर दी, हम डाउन फील करते हैं। इज इट राइट? यस और नो? इट इज नॉट राइट ना, बिकॉज कोई भी हमारे बारे में कुछ नहीं कह रहा, जो भी कह रहा है वो अपने बारे में बता रहा है। तो क्या हमें हर्ट होना चाहिए? बिकॉज अगर हम हर्ट होते हैं, अगेन हम किसको डैमेज कर रहे हैं? हम एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं क्या? उसने मुझे एक बार एक बात कही थी कि आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, 1 घंटा आपने बोला, हमें कुछ समझ में नहीं आया, आपको कुछ नहीं आता। ओके, मैंने आपकी इस बात को लिया, आप तो बात कह के अपने शहर चले गए, और मैं उस बात को रिपीट कर रही हूं, मैंने अपना 1 घंटा लगाया, मैं इतनी दूर से चल के आई, और इन्हें कुछ पसंद ही नहीं आया। तो आपने एक बार कहा था, अभी रोज रोज उसे अपने दिमाग में रिपीट करके अपने आप को परेशान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं ना। अब देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूं जिन्होंने सालों पहले की बातों को पकड़ के रखा हुआ है। जब मेरी शादी होके आई थी, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये कहा था, मदर इन लॉ की डेथ भी हो गई तब भी आप उस बात को न फॉरगेट कर रहे हो न फॉरगिव कर रहे हो। तो इतने सालों तक अपने अंदर नेगेटिविटी को पकड़ के अपने आप को हर्ट कौन कर रहा है? हम खुद करते। तो हम अपना ही एक नेगेटिव कर्मा बना रहे हैं। यहां पर एक बाबा ने एक इक्वेशन को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है, उस बात को भी समझिए कि देखिए, सपोज करिए मैंने, आपने मेरे लिए कुछ कहा और मैंने नहीं सुना, ऐसा भी तो होता है ना। हम घर पे बैठे भी किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसने नहीं सुना तो क्या उस कर्म का मुझे फल नहीं मिलेगा? मैंने आपके लिए कुछ गलत शब्द इस्तेमाल करे, आप बहुत लोगों में घिरे हुए थे, आपको सुनाई नहीं दिए, बट मैंने बोले तो क्या उसका मुझे फल नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिकॉज वो कर्म कहां गया? वातावरण में गया, वाइब्रेशन में गया। देखिए, एनिमल्स, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनका अपना कोई संस्कार नहीं होता, उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता, वो हमारे संस्कारों को कैच करते हैं। आज एनिमल्स, बर्ड्स भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो वो हमारे वजह से। जब हम ठीक होते हैं तो सृष्टि भी पूरी ठीक होती है। तो देखिए, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने तो अपनी जिंदगी में कोई भी बुरा काम नहीं किया, हमने किसी का कभी कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? यू नो द आंसर। अब ये बताइए, सबसे अच्छा कर्म क्या है? सबसे अच्छा कर्म, एनीवन प्लीज, सबसे अच्छा कर्म क्या है? परमात्मा की याद में रह के कर्म करना, परमात्मा को याद करना। ओके, तो परमात्मा को हम कैसे याद करते हैं? साइलेंस में याद करते हैं, मन मन में याद करते हैं, बोल के या हाथों से तो कर्म नहीं करते। तो जब सबसे अच्छा कर्म हम साइलेंस में रह के यहां पे करते हैं, तो क्या सबसे खराब कर्म हम यहां से नहीं कर सकते? तो जो हम दूसरों के लिए नेगेटिव सोचते हैं या उन्हें हर्ट करते हैं, घर पे बैठे हुए भी, मन में सोच के भी, वो भी कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हैं, और वो सूक्ष्म कार्मिक अकाउंट है जिनका फिर हमें किसी न किसी फॉर्म में अपनी लाइफ में फल मिलता है। दूसरी बात ये कि जो मैंने कहा, मैंने आपसे कुछ बुरा कहा, उस बात को लेकर आपने जो बनाया वो टोटली आपका कर्मा है, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। मैंने आपको कहा आपका ड्रेस अच्छा नहीं है, अब आपने उस एक बात को लेके उसे लेट गो कर दिया, उसे मेरा विचार समझ के छोड़ दिया, या उसको दिल से लगा के बैठ गए, इन्हें तो कुछ अक्ल ही नहीं है, इन्हें समझ ही नहीं है, मुझे कुछ समझते नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप जो अपने आप को हर्ट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, इट हैज नथिंग टू डू विद मी, इट इज योर कर्मा। बाबा ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया है, इसलिए हमें अपना कर्म क्या बनाना है उस बात को देखना है। लेट्स कम टू द अदर पार्ट ऑफ द इक्वेशन। देखिए, हमारे जो ये कर्म नेगेटिव बने हैं, ये क्यों बने नेगेटिव? हमारे कार्मिक अकाउंट जो नेगेटिव है, ये क्यों बने हैं? क्योंकि हम दूसरों से लेते रहे हैं, लेते रहे हैं, लेते रहे हैं, किसी से फाइनेंशियली, किसी से फिजिकली, किसी से इमोशनली, हम लेते रहे हैं, बोरो करते रहे हैं, और हम कर्जदार हो गए। जैसे आप बैंक से पैसे लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, तो आपके सर पे बहुत सारा कर्ज हो जाएगा जो फिर आपको चुकाना पड़ेगा। डू यू नो समथिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस? ओके, देखिए, एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। जैसे हमारा बैंक में एक अकाउंट होता है, मेरे अकाउंट में सपोज करिए 1,00,000 रुपया है और मैं बैंक मैनेजर से कहती हूँ नहीं मुझे 10,00,000 रुपया चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे 10,00,000 रुपये ओवरड्राफ्ट दे दो, तो क्या बैंक मैनेजर देगा आपको? नहीं देगा ना। सिमिलरली हर दो आत्माओं के बीच एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है जिसे हम अकाउंट ऑफ फेथ, अकाउंट ऑफ ट्रस्ट भी कह सकते हैं। देखिए जब मैं आपसे गुड मॉर्निंग करती हूँ, ओम शांति कहती हूँ, आपकी केयर करती हूँ, हम बच्चों को हग करते हैं, दैट इज लाइक अ डिपॉजिट इन दैट अकाउंट। हम किसी को मोटिवेट करते हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, आपका बिजनेस बहुत तरक्की को पाएगा, हम दूसरों को मोटिवेटिंग शब्द कहते हैं, ये हम उनके अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। हम किसी की चॉइस को याद रखते हैं, उसकी पसंद का खाना उसे बना के खिलाते हैं, हम उसका बर्थडे याद रखते हैं, उसे थैंक यू कहते हैं, दिस इज अ डिपॉजिट। और इसके विपरीत विड्रॉल, आप किसी काम के नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप एग्जाम में कभी अच्छे नंबर ला ही नहीं सकते, स्ट्रक्चर पास कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, तुम्हें ठीक से बोलना ही नहीं आता, तुम्हारे फ्रेंड्स इतने अच्छे नंबर लाते हैं, तुम कभी अच्छे नंबर नहीं लाते हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं ना बच्चों को। तो जब हम ये सब कहते हैं तो इट इज लाइक अ विड्रॉल। अब जब विड्रॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, विड्रॉल लेते रहते हैं, विड्रॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमारा रिश्ता कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है, आप देखते हो टिपिकल इंडियन फैमिलीज में एक डॉटर इन लॉ आती है और कुछ दिन बाद, 1 साल 2 साल बाद वो दूर रहती है घर से, उस मोहल्ले से भी दूर जाके एक मकान लेती है। क्यों? क्योंकि उसके इमोशनल बैंक अकाउंट में कभी डिपॉजिट किया ही नहीं जाता और हम विड्रॉल लेना टेकन फॉर ग्रांटेड। सिमिलरली जिसके भी घर में एडोलेसेंट बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, आप देखिए आप दिन में 10 बार उनसे विड्रॉल लेते हैं, ये तुमने क्या पहन लिया, ये कपड़े अच्छे नहीं है, ये तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं, कैसे कैसे फ्रेंड तुम ले आते हो, तुम ये क्या खाने लगे हो, पिज्जा बर्गर ये अच्छा नहीं है, मतलब हम उन्हें टोटली रिजेक्ट करते हैं A to Z, हम उनकी किसी भी बात को जैसे कि एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम जैसे कि उनकी किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, खाली उन्हें रिजेक्शन की एनर्जी देते हैं और हम कभी अपोलोजाइज भी नहीं करते, वी टेक इट एज ए पेरेंट, ये हमारा राइट है और हम अपोलोजाइज नहीं करते, तो ये क्या है? विड्रॉल। और जैसे अगर हम टाइम पे आते हैं, दूसरों की कमिटमेंट रखते हैं, आपने किसी से प्रॉमिस किया उसे फुलफिल करते हो, तो वो ट्रस्ट है। तो जिन लोगों के साथ हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट पॉजिटिव होता है वो आपकी कंपनी में सेफ फील करते हैं, आपके साथ वो सेफ फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। और इस विड्रॉल का रिजल्ट है कि हमारे बच्चों से इतने अच्छे रिलेशन नहीं रहते, वो बच्चे जिन पे हमने अपनी पूरा जीवन इन्वेस्ट करते हैं, टाइम मनी एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, बड़े होने पे वो बच्चे पेरेंट्स के साथ रहना, फोन करना भी पसंद नहीं करते, उसका रीजन क्या है कि हम उनसे इतना इमोशनल विड्रॉल लेते रहते हैं, उनके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करते, एज ए रिजल्ट हमारे नेगेटिव कर्मा बन जाते हैं। अब बाबा ने ये फॉर्मूला भी किसने सिखाया? बाबा तो आप समझते हैं ना, शिव बाबा को बाबा कहते हैं। तो बाबा पिछले 86 ईयर्स से हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट में इतना डिपॉजिट करते हैं हर रोज। मीठे बच्चों ने 24 घंटे में एक मिनट भी याद ना किया हो, बाबा क्या कहता है? मीठे बच्चे तुम मेरे सर के ताज हो, तुम मेरे दिल तख्त नशीन हो, तुम ही आने वाले सतयुग में होने वाले प्रिंस प्रिंसेस हो। तो बाबा इतना इमोशनल डिपॉजिट करता है कि ग्रेजुअली हम बाबा की हर बात को मानने लग जाते हैं, क्योंकि बाबा ने इतना हमारे में इन्वेस्ट किया। तो देखिए अब से हम अपने कर्मों को सेटल कैसे कर सकते हैं, कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि हम अपने कार्मिक अकाउंट को पॉजिटिव करने का, सेटल करने का बाबा ने ये फॉर्मूला दिया कि पहले तो आप दूसरों के इमोशनल बैंक अकाउंट में जमा करना शुरू करो तो पिछला जो माइनस है वो क्लियर हो जाएगा। जब पिछला सेटल हो जाएगा तो फिर आपका जमा होना शुरू हो जाएगा, शुभ भावना शुभ कामना टू एवरी सोल। तो आपके पास इतनी दुआएं जमा हो जाएंगी, इतनी दुआएं जमा हो जाएंगी कि आपके पास दुआओं का खाता जमा हो जाएगा। देखिए इस दुनिया में आपकी जो करेंसी चलती है वो रुपीज है, डॉलर है, यूरो है, दिरहम है, लेकिन जिस दुनिया में हम जाने वाले हैं वहां पर ये करेंसी नहीं चलती। अभी भी आपको अमेरिका जाना पड़े तो रूपी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे ना, तभी वहां कुछ शॉपिंग कर पाएंगे। तो जिस दुनिया में आप स्पिरिचुअलिटी में जाने वाले हैं वहां आपका रूपी पैसा काम नहीं आएगा, वहां दुआएं ही काम आएंगी। तो दुआओं का खजाना जो कि खाली इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके, खाली शुभ भावना शुभ कामना और आत्मा को देके हम कितनी इजीली अर्न कर सकते हैं, वो बाबा ने बताया कि आप शुभ भावना शुभ कामना टू ईच एंड एवरी सोल। इस दुनिया में एक भी आत्मा ऐसी ना हो जिसके प्रति आपके मन में कोई नेगेटिविटी हो, तो आपके कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएंगे और साथ साथ दुआओं का खजाना जमा हो जाएगा। चलिए इज इट क्लियर, एग्री? तो सभी लोग मेक इट ए पॉइंट आज से एक प्रॉमिस करेंगे कि वो सभी रिश्ते जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेरी फैमिली में बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, वर्क प्लेस पे जो लोग हैं, उन सबको आप डेली एक पॉजिटिव मोटिवेटिंग सेंटेंस बोलेंगे, उन्हें ऑडिबल हो, उन्हें बोलेंगे आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, कुछ भी कह सकते हैं ना, इजी है, इजी है। तो अगर आप ये करेंगे तो आई गारंटी इट कि बाबा के बच्चे बनके अगर हमें अपने संबंधों को ठीक करना भी नहीं आया तो हमने कुछ नहीं सीखा। एटलीस्ट ये एक चीज सीख के जाएंगे कि आज के बाद आपके परिवार में आपका किसी से भी संबंध खराब नहीं होगा, केवल एक अच्छा सेंटेंस हर रोज अपने परिवार के लोगों को बोलिए, उन रिश्तों को बोलिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो दूर के हैं पूरी दुनिया के लिए शुभ भावना और शुभ कामना करेंगे। प्लीज रेज योर हैंड, कौन कौन करेंगे ये प्रॉमिस? देखिए बाबा देख रहा है, आज से हम सभी इमोशनली इंटेलिजेंट बनेंगे। थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट एस्पेक्ट पे चलते हैं। देखिए हम इस एक थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं, 3D में, और जो फोर्थ डायमेंशन है दैट इज द डायमेंशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और हम उस फोर्थ डायमेंशन को एक्सेस कर सकते हैं बाय फेथ, बाय हैविंग अ मेंटल कम्युनियन विद हायर एनर्जी विद गॉड फादर, बाय हैविंग फेथ, by visualization, by talking to him, by having a mental relation with him. तो हम उस fourth dimension में जा सकते हैं, easily access कर सकते हैं fourth dimension को, अगर हम एक spiritual world में enter करते हैं। और जब हम fourth dimension में जाते हैं तो वहां पर कोई suffering या pain नहीं होता, आपके karmic account light हो जाते हैं, आप को इस बात में फेथ होता है कि जो मैं सोच रहा हूं मेरी थिंकिंग का मेरी डेस्टिनी पे असर पड़ता है। सुना है ना पिछले चार दिन में, मेरी थिंकिंग का मेरी डेस्टिनी पे मेरी लाइफ पे असर पड़ता है। मुझे अपनी लाइफ का एक गोल सेट करना है टू बी अ डिवाइन ह्यूमन बीइंग, एंड आई हैव द करेज टू क्वेश्चन द एज ओल्ड ट्रेडिशंस वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। तो उस फोर्थ डायमेंशन में जब हम जाते हैं तो हमारा एनर्जी फील्ड लाइट होता जाता है और हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल होते जाते हैं। देखिए एक साइंटिस्ट हैं फ्रिट्स एल्बर्ट पॉप, उन्होंने बायो इमिशन ऑफ बायो फोटोन्स थ्योरी पे काम किया है और आप देखेंगे ये ज्ञान कितना साइंटिफिक है। उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी में 37.3 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल में न्यूक्लियस है और उसके अंदर डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, डीएनए है। हमारा डीएनए कंटिन्यूसली एक लाइट इमिट करता है और वी आर बीइंग्स ऑफ लाइट, ह्यूमन बीइंग्स दे आर बीइंग्स ऑफ लाइट। और उस लाइट के बारे में जितना हम ज्यादा अवेयर होते हैं, जितना हम ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, बिकॉज वेयर अटेंशन गोज देयर एनर्जी फ्लोस, तो जितना हम उसके बारे में अवेयर होते हैं हमारे डीएनए की लाइट बढ़नी शुरू हो जाती है और हमारा पूरा बॉडी एक इथरल बॉडी, एक लाइट का बॉडी बनता जाता है। तो जैसे बाबा ने कहा कि आप एक फरिश्ता हो, आप एक एंजल हो, आपका एक लाइट का बॉडी है, तो जितना ज्यादा हम इसके बारे में अवेयर होते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने भी प्रूफ कर दिया कि बायोफोटोनिक इमिशन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन फ्रॉम योर डीएनए एंड द मोर यू आर अवेयर अबाउट इट द ग्रेजुअली दिस लाइट विल इंक्रीज एंड द मोर द लाइट विल इंक्रीज इट यू विल बी इन द फिफ्थ डायमेंशन इन फर्दर हायर डायमेंशन एंड देयर इज नो सफरिंग इन दैट फिफ्थ डायमेंशन विच इज कॉल्ड द क्वांटम वर्ल्ड। देखिए ये जो क्वांटम वर्ल्ड की बात है उसमें क्या होता है कि हम अपने आप को एक प्योर एनर्जी समझकर चलते हैं। देखिए एनर्जी क्या है, एनर्जी हैज वाइब्रेशन, एनर्जी हैज वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन हैज थॉट एंड इंटेंशंस, वाइब्रेशन कैरीज इंफॉर्मेशन। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी से आप दूसरों को हील भी कर सकते हो। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तीन रैट्स लिए गए, एक रैट का उन्होंने एक रैट को लिया और उस रैट का पेंक्रियास निकाल दिया और एक और रैट लिया, उस रैट की पेंक्रियास को सिर्फ डैमेज कर दिया, वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा था। आफ्टर 4 डेज इंसुलिन ना बनने के कारण उन रैट्स की डेथ हो जानी चाहिए थी, बट 4th डे उन्होंने क्या किया, उन रैट्स को एक लाइन में बिठाया, एक हेल्दी रैट, उसके बाद वो रैट जिसमें पेंक्रियास नहीं है, उसके बाद वो रैट जिसकी पेंक्रियास डैमेज है। तो एक लाइट पास की गई हेल्दी रैट की पेंक्रियास से उन दोनों रैट्स में, और उन्होंने देखा कि उन रैट्स की डेथ नहीं हुई उस एनर्जी पास करने के बाद। तो उस एनर्जी में, उस लाइट में इंफॉर्मेशन पास हुआ और उन दोनों रैट्स की पेंक्रियास, एक की रीग्रोथ हो गई और दूसरे की पेंक्रियास ठीक हो गई। तो एनर्जी में इतनी पावर है बिकॉज एनर्जी कैरी इंफॉर्मेशन। तो व्हेन वी आर बीइंग्स ऑफ एनर्जी और हम उस फिफ्थ डायमेंशनल वर्ल्ड को एक्सेस कर सकते हैं कि बाय हमारी जो मल्टी फेसेट पर्सनैलिटीज हैं उस कवर को पार करके हम वहां जा सकते हैं। क्योंकि व्हेन वी आर बीइंग्स ऑफ एनर्जी एंड वी कैन एक्सेस दैट वर्ल्ड एज नो बॉडी, एज नो बीइंग, ओनली अ प्योर कॉन्शियसनेस, एज अ प्योर सोल जिसका कोई कास्ट नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, आप अपने इन रूटीन्स, शेड्यूल्स, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ उस फिफ्थ डायमेंशनल वर्ल्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमें अपने ये फेसेस हटाने होते हैं, आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग, आई एम ओनली अ प्योर एनर्जी, मैं एक आत्मा हूं, एक प्योर आत्मा हूं। उस स्थिति में रहकर जब हम उस फिफ्थ डायमेंशनल वर्ल्ड को एक्सेस करते हैं जो कि क्वांटम वर्ल्ड है, वहां पर आप अपने एनर्जी लेवल को चेंज कर सकते हैं और किसी भी पोटेंशियल एनर्जी लेवल से अपनी एनर्जी मैच करके आप अपनी डेस्टिनी या फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी टर्मिनल डिजीज होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, उन केसेस में क्या होता है कि जब हम उस प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट में, क्वांटम वर्ल्ड में होते हैं, तो वहां पर हमारे ब्रेन को कोई डेंजर नहीं होता, हमारी कॉन्शियसनेस को, बिकॉज इस वर्ड में तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स रहता है, तो हमारी जो कॉन्शियस एनर्जी है वो नियोकॉर्टेक्स से लिम्बिक ब्रेन में आ जाती है. लिम्बिक ब्रेन इज कनेक्टेड टू योर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और वो आपके बॉडी को हील करना शुरू कर देता है. बिकॉज थ्रू आउट लाइफ हम अपने बॉडी को हील करने के लिए कभी भी फ्री नहीं होते. ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और फिफ्थ डायमेंशन का. फिर कभी मौका मिलेगा तो इसको बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अभी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई वुड लाइक टू क्लोज द सेशन बिकॉज टाइम हो गया. तो मैं दो शब्दों के साथ इसे एंड करती हूं. होठों से मुस्कान आपके कभी जाए ना, होठों से मुस्कान आपके कभी जाए ना, आंख में आंसू आपके कभी आए ना, पूरा हो आपका हर ख्वाब, पूरा हो आपका हर ख्वाब, जो ख्वाब पूरा ना हो वो कभी आए ना. ओम शांति. थैंक यू वेरी मच.
ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोमती अग्रवाल जी का. अब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि उनका शॉल उड़ाकर धन्यवाद करेंगे डॉक्टर गोमती अग्रवाल जी का. सभी तालियां बजाएंगे. डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी, सभी ताली बजाएंगे. ओम शांति.